Padaya. Krishna Prishthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta. Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi. Gauravani Pracharine. Nirvisheshaya Shunyavadi. Paschatadeshatarine. Gurave Gaurachandraya. Radhika Tadalyai. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Mudiraye. Nashta Praishva Bhadresho. Nityam Bhagavata Sivaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktira Bhavati Naishtuke. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya. Prabho Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Antarashtra Krishna Bhavana Amrit Sangh. Sansthapika Acharya Sri Krishna Kripa Murti. Abhay Charanaravind Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Kripa Se Shri Radha Govinda Mandir ISKCON Noida Mein Aaj Pratha Srimad Bhagavat Ke Satsang Mein Aapka Swagat Hai. Kal Bhagwan Sri Jagannath Ka Rath Yatra Mahotsav Hai. Gundicha Marjan Aaj Ke Din Hota Hai. Aur Raghav Pandit बारह महीने के लिए महाप्रभु के लिए जो बहुत सुंदर उनकी बहन दमयंती बनाती है प्रसाद आचार और व्यंजन बहुत सारे बारह महीने के लिए वो कल के दिन बड़ा उत्सव मनता है गंभीर में बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी का सायंकाल को दर्शन होगा नव यौवन नेत्र उत्सव और साथ में आज सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि और पंच तत्व में भगवान की अंतरंग शक्ति गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि भी है। तो पहले हम नेम से जो श्लोक लिखा हुआ है, सातवां स्कंद छठा अध्याय, प्रहलाद महाराज का अपने सहपाठी दैत्य पुत्रों को उपदेश, उसका 14वां श्लोक पढ़ेंगे और फिर संक्षेप में आशीर्वाद लेंगे भक्ति विनोद ठाकुर गदाधर पंडित के महाप्रभु के प्रेम भक्ति के प्रसाद को प्राप्त करेंगे। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। कुटुंब पोषाय व्यंजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रै दुखै तात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। कुटुंब पोषाय व्यं निजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रै दुखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। कुटुंब पोषाय व्यं निजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रै दुखैतात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। कुटुंब पोषाय व्यनिरायो नोएडा सातवां स्कंद छठा अध्याय 14वां श्लोक। कुटुंब पोषाय विहनिजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रै दुखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। माताजी कुटुंब पोषाय व्यं निजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वतात्रय दुखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः। तो ये सातवें स्कंद के छठे अध्याय का 14वां श्लोक। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब पोषाय, कुटुंब के पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए। व्यम निज आयु, व्यम का मतलब खर्च होता है और निज आयु का मतलब अपना जीवन, आसक्त व्यक्ति का अपना जीवन सारा खर्च होता है कुटुंब के पालन पोषण में, न बुद्धि है तो नहीं जानता है, ये बात नहीं जानता है, उम्र खर्च हो रही है ये नहीं जानता है अपनी, और क्या जानता है अर्थम, हाँ वित्तम, धन को जानता है कितना कमा रहा हूं वो गिन लेता है, अब बहुमूल्य है जीवन वो जा रहा है उसकी परवाह नहीं है, और जो आने जाने वाला पैसा है उसका बहुत चिंता है आ रहा है वो गिनना आता है, लेकिन अपनी आयु गिनना नहीं आती। कुटुंब पोषा है, कुटुंब के पोषण ले वय निज आयु अपने जीवन को खर्च कर रहा है, न बुद्धि है तो नहीं जानता है, नहीं जानता है अर्थम, जीवन का कितना बहुमूल्य ये नहीं जानता है, जीवन के अर्थ को नहीं जानता है। प्रभुपाद का तात्पर्य है जीवन को अर्थ का नहीं जानता है का मतलब एक सेकंड जीवन भी एक अरब रुपया देके वापस नहीं लिया जा सकता, जीवन का एक क्षण भी किसी कीमत में खरीदा नहीं जा सकता ये नहीं जानता है। पैसा तो समझ लेता है लेकिन अपनी जाय उसके बदले में आयु जा रही है उसका परवाह नहीं है। विहतम प्रमथ, प्रमथ का मतलब पागल, किस में पागल है माया मोह में, किस में पागल है नीचे शब्द है कुटुंब राम, कुटुंब के सुख और आनंद में पागल है, कुटुंब राम, राम का मतलब सुख आनंद, कुटुंब के सुख में पागल है, और व्यर्थों का आश्रय अपना जीवन व्यर्थ जा रहा है, बहुमूल्य जीवन व्यर्थ जा रहा है ये नहीं जानता है, लेकिन कुछ धन आ रहा है वो गिनता है बड़ा खुश हो रहा है, और जब ये काम कर रहा है तो क्या कष्ट उसको मिल रहा है संसार में, सर्वत्र ताप त्रयी दुखित आत्मा, दुखित आत्मा है बेचारा बहुत दुखी है, तीन प्रकार के कष्ट निरंतर सह रहा है, सर्वत्र सब प्रकार से सब जगह शरीर का दुख भोग रहा है, मन की चिंताएं भोग रहा है, दूसरे प्राणियों के दिए गए दुख को भोग रहा है, और प्रकृति के कोप उसको भी भोग रहा है। निर्विद्य न, फिर भी उसको इतना दुख भोगता है तो निर्विद्यते, बहुत दुखी होता है, कुटुंब का पालन नहीं हो रहा है, उम्र जा रही है उसकी परवाह नहीं है, न स्व कुटुंब राम, बस अपने कुटुंब और परिवार में आनंद से रहने के लिए बड़ा चिंतित होता है, अपनी आयु के लिए चिंतित नहीं होता है, अपना जीवन जा रहा है उसकी व्यर्थ जा रहा है उसका पता नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, जो अति आसक्त है घर गृहस्थी में वो नहीं समझ सकता है कि मेरा बहुमूल्य जीवन केवल कुटुंब के पोषण में जा रहा है, और वो ये भी नहीं समझ रहा कि जीवन का लक्ष्य है क्या, ये जीवन तो भगवत साक्षात्कार के लिए है, परम सत्य को जानने के लिए है, ये वो नहीं समझ पाता है। इसलिए वो जीवन अपना व्यर्थ गंवा रहा है, व्यर्थ जा रहा है बेकार, परंतु दूसरी ओर वो बहुत होशियार है कि अपना पैसा कहीं चला न जाए, उसमें उसको चिंता बहुत रहती है, रुपया पैसा कहीं गया तो वो कभी नहीं भूलता है, लेकिन उम्र चली गई उसकी परवाह नहीं है। संसार में बड़े दुख भोग रहा है, तीन प्रकार के ताप भोग रहा है, लेकिन फिर भी उसको दिल नहीं उठता है कि मैं ये छोड़ दूं, उसको डिस्टेस्ट नहीं डेवलप होती है, डिस्टेस्ट फॉर मटेरियल लाइफ, मतलब भौतिक भोग की प्रति उसको उपरांत होता ही नहीं है, थकता ही नहीं है उससे, दुख भोगते वही करता है। इसको प्रभुपाद जी कहते, लात खाता है गधा फिर भी गधी के पीछे भागता है। प्रभुपाद की भाषा में वो कभी कभी बोलते हैं, किक खाता है, किक गधी की किक खाता है फिर भी गधा उधर ही भागता है। इसकी परिभाषा प्रभुपाद के कभी कभी शब्दों में ऐसे हुआ करती थी। प्रभुपाद का तात्पर्य शुरू होता है मूर्ख, क्योंकि गधा तो फूलिश शब्द लिखा है, उसका मतलब अर्थ गधा होता है। मूर्ख मानव अपने जीवन का मूल्य नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि कितनी बहुमूल्य जीवन कैसे तुच्छ भोग के लिए जा रही है। हीरे जैसा मानव जन्म कोड़ी बदले जाए रे। कोड़ी पहले जमाने में पैसा नहीं होता था, ये जो कोड़ी कहते हैं समुद्र के किनारे में जो सिप्पी के छोटे छोटे मिलते हैं ना बच्चों के खेलने के, उसको कोड़ी बोलते हैं। तो एक आने में 6 कोड़ी 12 कोड़ी होती थी। इसका मतलब है जो पैसे से भी जिसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए जीवन जा रहा है। हीरे जैसा मानव जीवन कोड़ी बदले जाए रे, इसका अर्थ ये। पैसा गिनना आता है प्रभुपाद देखते बड़ा होशियार है। पाउंड सिंग इंग्लैंड की भाषा लिखी है, पाउंड स्लिंग पेनी, इसका मतलब रुपया पैसा, ये तो सब अच्छी तरह से जानता है, उसकी गिनती में उसको कोई कमी नहीं आई है। लेकिन वो मूर्ख है, बट इज सो फूलिश दैट ही डज नॉट नो हाउ मच मनी ही इज लूजिंग। उसको ये पता नहीं है कि मेरी बहुमूल्य जीवन जा रही है वो कितनी कीमती है, उसका क्या मूल्य वो नहीं जानता है। वैसे जीवन का एक दिन जाता है कितना बहुमूल्य है। सिकंदर आजम विश्व विजेता भारत में आया था तो बीमार हो गया था, मच्छरों ने काटा था, मलेरिया हो गया था, मरने वाला था। तो एक दिन अपने सेनापति को कहता है कि देखो मैं विश्व विजेता हूं, पूरा दुनिया मैंने विजय कर लिया है, फतेह कर लिया है, कांकर किया है, मैं तुम्हें आधी दुनिया देता हूं, तुम मुझे 1 महीना तेरे जीवन का दो, मैं वापस मेरी मां को जाके इजिप्ट में देखना चाहता हूं। सेनापति ने कहा महाराज मैं महीना जीवन का आपको कैसे दे सकता हूं। तो बोला सारा मेरा राज्य जो मैंने जीता है वो ले लो, एक दिन जीवन का जो कम से कम मेरी मां को चिट्ठी तो लिखूं। सेनापति ने कहा महाराज एक दिन भी देना संभव नहीं है। तब सिकंदर ने कहा दुनिया वालों को ये बता देना जब मैं मर जाऊं कब्र में डालो तो मेरे हाथ बाहर रखना और दुनिया को ये कहना कि सारी जिंदगी विश्व को विजय करने में लगा दी और आज पूरा विश्व उस दाव पे लगा रहा हूं, उसके बदले में एक दिन नहीं मिल रहा है। जिंदगी लगा के दुनिया पाई, अब दुनिया दे रहा हूं, एक दिन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पूरी जिंदगी के बदले एक दिन का भी मेरे को लाभ नहीं हुआ। और बता देना दुनिया को कि सिकंदर विश्व विजेता खाली हाथों दुनिया से गया। पूरी दुनिया दे रहा हूं, एक दिन नहीं मिल रहा है और पूरा जीवन इस दुनिया को पाने में लगा दिया। तो कितना भी खर्चा करने से आयु का एक दिन नहीं मिलता है, इतनी बहुमूल्य आयु व्यर्थ जा रही है कुछ कोड़ी इकट्ठा करने में, उसके बगैर भी काम चल सकता है। प्रायः जितना हमको आवश्यकता है घर में 2 टाइम की रोटी खाने की, वो तो 2-4 घंटे काम करने से भी काम हो सकता है। लेकिन लोभ लालच के कारण कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते। 2 टाइम की रोटी खाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है जितना लोग कर रहे हैं। इतना इकट्ठा कर रहे हैं, करेंगे क्या वो भी पता नहीं, वो भी मालूम नहीं है क्या करेंगे। सोने की रोटी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो 2 चपाटी खाएंगे, थोड़ी 4 सब्जी खाएंगे, कटोरी 1 चावल खाएंगे, और क्या खाएंगे। सोने की रोटी खा सकते हैं क्या, इतने लोभी लालची हैं। तुम्हारा कृपा करो मुझे जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। बोला तथा आज तू जाओ दरवाजे को लगाया सोना हो गया, कुछ हो गया मेरा सोने का दरवाजा है। पलंग को लगाया कुछ हो गया, पलंग सोने का हो गया। लेकिन घरवाली रोटी लाई, रोटी को हाथ लगाया सोने की लगी, अब खाए क्या? और घरवाली को कहा ये क्या हो गया, तो उसको हाथ लगाया वो सोने की हो गई, तो अब क्या करे? अब बात किससे करे, वो तो मूर्ति हो गई सोने की, रोटी सोने की हो गई, अब खाए क्या? तो इतना सोना भी नहीं बनाना चाहिए कि खाना भी सोना हो जाए। वो दुखी हो गया बहुत। और चाणक्य पंडित प्रभुपाद जी कहते, चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप जीवन का एक क्षण भी आजीवन की कमाई देके खरीद नहीं सकते। जीवन भर की सारी पूंजी देके एक क्षण भी जीवन का खरीद नहीं सकते हो। तो फिर मूर्खता से ये जीवन बेकार में क्यों जा रहा है? प्रभुपाद ने चार बार फूलिश पर्सन लिखा है इस परपट में। मूर्ख ऐसा बहुमूल्य जीवन बेकार में गंवा रहा है, केवल पैसा गिनने में जिंदगी खराब कर देता है। बाकी सब हिसाब किताब रखता है, लेकिन अपने जीवन का हिसाब किताब नहीं रखता है। और हमेशा दुख भोगता रहता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के दुखों से मुक्त होने का बिल्कुल चिंता नहीं करता। प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर प्रवचन देते हुए कहा है, एक होते हैं भोगी, एक होते हैं योगी, एक होते हैं रोगी। प्रभुपाद जी प्रवचन में ऐसे कह रहे हैं, रोगी भोगी और योगी। तो संसारी लोग एक तो हैं भोगी, वो कुटुंब राम शब्द को लेके प्रभुपाद ने एक श्लोक कहा कि योगी रमनते, योगी रमण करते हैं आत्मना, तो इसलिए उसको राम कहते हैं, जिसमें योगी जिसमें रमण करें। और ये कुटुंब में रमण कर रहा है ये भोगी है, जो राम में रमण करे वो योगी, जो कुटुंब में रमण करे वो भोगी। और ये भोगी तापत्रिय भोगते हुए बनता है रोगी, तो ये भोगी रोगी है और दूसरी तरफ भगवान के भक्त योगी हैं। फिर प्रभुपाद का योगी क्या करते हैं? योगी भी बहुत प्रकार के हैं। एक तो योगी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब सिद्धि एक प्राप्त करते हैं आकाश में उड़ने की, अब क्या जरूरत है? हवाई जहाज में 500 आदमी उड़ रहे हैं, फिर योगी क्यों टाइम खराब कर रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं अभी तो लोग जहाज में उड़ सकते हैं, तो टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? एक योगी बहुत बड़ी सिद्धि करके आया कि बोला पानी के ऊपर चल सकता हूं, देखो गंगा पार करके चला जाऊंगा, चला गया। दूसरे बोला मूर्ख कितना टाइम लगाया? बोला 15 साल। बोला अठाने की चीज है, अठाने में नाव में जा सकते हो, तो तुमने काय के लिए पूरा 15 साल खराब किया? अठाना में जो काम हो सकता है उसके लिए 15 साल बेकार गंवा दिए? 15 साल के परिश्रम से तुम्हें मिला क्या? अठाने का काम किया तुमने। तो प्रभुपाद कहते ये सारा योग की भी अभी कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक व्यक्ति कह रहा है, उसका योगी मित्र है, उसने कहा तुम्हें जो चाहिए वो ला दो। तो हमने कहा, उस बच्चे ने कहा हमको चाहिए कंधार के अनार। तो उसने बोला देखो अंदर कमरे में पड़े, जाके देखा तो ताजे फल से टूटे हुए अनार पड़े थे। इसको बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। और योगी ऐसे कोई चीज कहीं से भी प्राप्त कर सकते। प्रभुपाद ने प्रवचन में कह रहे हैं कि ऐसे योगियों के पास सिद्धि होती है, लेकिन वो सिद्धि काम किसकी? और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, चाहे भोग वाला कर्मी मुक्ति भुक्ति चाहे, या ज्ञानी मुक्ति चाहे, या योगी सिद्धि चाहे, सकल अशांत, क्योंकि उनको शांति नहीं है, क्योंकि इच्छाएं। कृष्ण भक्त अकाम अतएव शांत, कृष्ण भक्त को और कोई कामना नहीं है सवाय भगवान के सेवा के, भगवान के भक्तों की सेवा के, इसलिए वो ही केवल शांत है। तो आज तिरुभाव तिथि है भक्ति विनोद ठाकुर की, और गदाधर पंडित पंचतत्व में पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम। जो भक्त, जो भगवान की शक्ति है, दो प्रकार की शक्ति है भगवान की, अंतरंग शक्ति और बाह्यरंग शक्ति। अतः अंतरंग शक्ति का स्वरूप गदाधर पंडित है राधा रानी। राधा रानी का जो करुणामय भक्तों के पोषण वाला अंग, भगवान से प्रेम करके भगवान को कहे कि ये भक्त आपकी भक्ति कर रहे हैं, इनको आप अपने शरण में लीजिए, वो भाव राधा रानी का तो चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया, लेकिन शेष भाव राधा रानी का जो महाप्रभु के, जो कृष्ण की सेवा का है, वो भाव लेकर गदाधर पंडित का प्रकट हुआ। सो गदाधर पंडित राधा रानी का स्वरूप है, और इसलिए पंच तत्व में बीच में चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं श्री कृष्ण है, उनके सीधे हाथ में नित्यानंद है जो बलराम है, और उनके सीधे हाथ में अद्वैत आचार्य है जो महाविष्णु है। तो ये तीनों प्रभु है, ये तीनों विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व भगवान के राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में पहले गदाधर है, वो अंतरंग शक्ति राधा रानी, और उसके लेफ्ट साइड में श्रीवास है जो नारद का अवतार है, वो जीव तत्व है, वो जीव तत्व है, तो नारद का अवतार है वो लेफ्ट साइड में। तो भगवान की शक्ति सदा भगवान के वाम भाग में, लेफ्ट साइड में होती है। हम ही भगवान की शक्ति है, इसलिए हम भगवान को प्रणाम लेफ्ट साइड से करते हैं, क्योंकि हम भगवान की शक्ति है। किसी देवी के, देवता को प्रणाम करना होता है तो राइट साइड से करते हैं, देवी देवता का प्रणाम राइट साइड से होता है। प्रभुपाद जी किसी देवी के मंदिर में, किसी ने बुलाया था तो जा रहे थे, भक्तों ने कहा देवी के मंदिर में जाएंगे, बोला क्यों, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान की भक्ति में बाधा ना डाले। और गए तो प्रभुपाद ने कहा जैसे मैं प्रणाम करूं वैसे करना, प्रभुपाद ने देवी को सीधे तरफ से प्रणाम किया, जैसे हम करते हैं लेफ्ट हैंड, उसमें राइट साइड से किया। फिर भक्तों ने पूछा ऐसे क्यों, बोला वो भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति है, तो शक्ति शक्ति को प्रमाण हम राइट साइड से करता है, शक्ति शक्तिमान को प्रणाम लेफ्ट साइड से करता है। और इसलिए भगवान की शक्ति राजा रानी है तो हमेशा लेफ्ट में होती है, सीता है तो लेफ्ट में होती है, राम के लक्ष्मी है तो लेफ्ट में होती है, तो ये नेम है। तो गदाधर पंडित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वाम भाग में विराजते हैं, बचपन से ही साथी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के गदाधर पंडित बचपन से साथी थे, वो बचपन के साथी सहपाठी, और एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, कभी सची माता के यहाँ खेलते थे और कभी रत्नावती, उनकी माता का नाम था, गदाधर पंडित की माता का नाम था रत्नावती और पिता माधव मिश्रा। सो माधव मिश्रा और रत्नावती के घर में इनका प्रकट्य हुआ था, और महाप्रभु का बचपन के, वैसे तो आगे चल के उनको कहते हैं गदाधर प्राण, चैतन्य महाप्रभु क्या है, बोला गदाधर प्राण है। जैसे कहीं गौर नेताए हैं, कहीं कहीं गौर गदाधर की पूजा होती है, तो गौर गदाधर। अब देखिए गौर निताय हैं तो नित्यानंद राइट साइड में खड़े होते हैं चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन गौर गदाधर में, गदाधर में उल्टे तरफ पे खड़े होंगे, वो लेफ्ट साइड में खड़े हो जाएंगे, उनका जो स्वरूप होगा गौर गदाधर वो महाप्रभु के लेफ्ट साइड में हो जाएंगे गौर गदाधर। तो गौर गदाधर का के रूप में बहुत बड़ा विख्यात मंदिर है, और मुकंद दत्त के साथ बहुत बड़ी मित्रता थी गदाधर पंडित की। तो एक दिन मुकंद दत्त ने कहा कि एक बड़े वैष्णव आए हैं, चलो उसका दर्शन करने चलते हैं। वो वैष्णव थे पुंडरिक विद्यानिधि, जो बहुत बड़े रईस आदमी धनी। तो देखा जाके गदाधर पंडित ने तो रेशमी कपड़े पहने हैं, मानो बड़ा सोना बना पहना हुआ है, ठाट बाट से बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे वैष्णव हो सकता है, भाई वैष्णव को तो बहुत सादा होना चाहिए, जीवन सिंपल होना चाहिए, ये तो वैष्णव बहुत बड़ा जो है अडंबर दिख रहा है। तो मुकुंद दत्त ने कोई भागवत का श्लोक उच्चारण किया तो पुंडरीक विद्यानिधि नीचे से धरती पे लौटने लगे, सारा श्रृंगार बिखर गया, वो कृष्ण प्रेम में मदमस्त हो गए। ये देख कर बहुत ग्लानि हुई गदाधर पंडित को कि मैं एक वैष्णव को पहचानने में गलती कर गया। तो फिर उन्होंने कहा इसका मार्जन कैसे करूं, ये जो गलती हो गई है इसको धोऊं कैसे। बोला जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी का शरण लेना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली, जाके उसके शिष्य बने। वैसे पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु है और ये उनकी पुत्री राधा रानी है। तो पुंडरीक विद्यानिधि का कृष्ण लीला में वृषभानु बाबा का सेवा है, वृषभानु नंदन के नाम से। तो पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित ने दीक्षा ली और फिर गदाधर पंडित जब चेतना महाप्रभु संन्यास लेके चले गए जगन्नाथपुरी में, तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया जगन्नाथपुरी में। क्षेत्र संन्यासी, क्षेत्र संन्यास उसको कहते हैं जो एक सीमा से बाहर नहीं जाते। कुछ लोग सीमित क्षेत्र संन्यास लेते हैं, भाई एक आदमी कहे कि मैं एक साल तक इस मंदिर के परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो कुछ सीमा कुछ समय के लिए क्षेत्र संन्यास लिया। वैसे सब भक्तों को समय में और स्थान में थोड़ा सा ऐसे संन्यास लेने का अभ्यास करना चाहिए। पहले तो कहना चाहिए एक घंटा इस जगह बैठूंगा, एक समय घंटा हो गया, स्थान यही है, उठूंगा नहीं जप करूंगा। क्योंकि आदमी जब तक समय में नहीं बांधेगा, स्थान में नहीं बांधेगा, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। तो जीवन में कुछ समय बांधना चाहिए। ऐसे कभी 15 दिन में कहना एक दिन में घर से नहीं निकलूंगा, ऐसे अनुभव करना चाहिए नहीं जाऊंगा, ये पूरा दिन मैं घर में बैठूंगा, आज शास्त्र पढ़ूंगा, जप करूंगा, कुछ और काम नहीं करूंगा। तो ऐसे कभी कभी क्षेत्र संन्यास लेना चाहिए, छोटा छोटा लेने का अभ्यास करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जीवन में ये अभ्यास। इससे तो एक अपने ऊपर नियंत्रण तो पता लगेगा हमारा बस अब चलता है कि नहीं चलता है हमारे ऊपर, वैसे चलता नहीं है। तो कम से कम एक जगह बैठने का नियम तो बनाना चाहिए, क्षेत्र में बांधना चाहिए, समय में बांधना चाहिए और स्थान में बांधना चाहिए थोड़ा समय। इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, कभी जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे। महाप्रभु जब वृंदावन के लिए गए तो कटक तक आए, महाप्रभु नहीं आप क्षेत्र संन्यासी है, भुवनेश्वर से आगे ये क्षेत्र पूरा हो जाता है, ये श्री क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी जो है इसको श्री क्षेत्र कहते हैं। और श्री क्षेत्र शंख उसकी शक्ल है शंख जैसी, पूरा क्षेत्र जो है वो शंख जैसा है और उसका मुख जो है भुवनेश्वर है शंख का, जहां से प्रवेश करते हैं। तो इसको श्री क्षेत्र कहते हैं, जगन्नाथपुरी उसके अंतर्गत आती है। तो आपका क्षेत्र यहां तक है, यहां से आगे जाना नहीं है आपको। तो वहां से फिर गदाधर जी वापस जाके रहे और तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित रहते थे और चेतना महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, लेकिन रोज जाते थे तोटा गोपीनाथ में और गदाधर पंडित भागवत रोज सुनाते थे। गदाधर पंडित बहुत प्रेम से भागवत को गाते थे। दूसरी स्मृति आ रही थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत अच्छा भागवत गाते थे, बहुत स्वरों में भागवत गाते थे। और जब उनसे श्रीनिवास भागवत सीखने गए तो उन्होंने कहा एक ही मेरे पास कापी थी भागवत की, पढ़ते पढ़ते इतने आंसू गिरे हैं कि कोई शब्द अब पढ़ा नहीं जा रहा है। भागवत पढ़ते पढ़ते वो जो पोथी थी हाथ की लिखी हुई, इसके सारे शब्द ही बह गए, मिट गए, फिर दूसरी प्रति कहीं से लाए तब भागवत पढ़ाया। तो भागवत का निरंतर भागवत का चेतना महाप्रभु को पाठ करके सुनाते थे। सो गदाधर पंडित की ये महिमा है। और जैसे हम राधा रानी को, जैसे राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है, ऐसे गौर गदाधर ये युगल स्वरूप है। राधा रानी महाप्रभु के अंदर भी है और शेष भाव राधा रानी का गदाधर के रूप में है। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को कहते हैं मैं कमल मंजरी हूं, अपनी पहचान कराते हैं कमल मंजरी, और अपनी आयु बताते हैं कि मैं कमल मंजरी और भगवान की मंजरी भाव से उपासना करने वाले ऐसे अद्भुत ग्रस्त आचार्य हुए हैं, जिसको अब गौड़ीय वैष्णव सप्तम गोस्वामी की श्रेणी में गिनते हैं। जैसे छह गोस्वामी, ऐसे सातवां गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त के नाम से बड़े प्रभावशाली बचपन के स्कूल के जीवन बीतरा, अंग्रेजों के सरकार में पढ़े लिखे और पहले मास्टर बने, टीचर बने और फिर मैजिस्ट्रेट बने, और मैजिस्ट्रेट भी पुरी में बने। तो जगन्नाथपुरी के सारे मंदिर का संचालन का भार भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर था, और मंदिर में अंदर जो भी नेम चाहिए थे वो भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाए थे उस वक्त में, किस तरीके से मंदिर का अर्थव्यवस्था होगा, सेवा होगा। तो उनके मैनेजर थे ब्रिटिश की ओर से। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन काल में दो विवाहों का वर्णन है और पुत्र संतानों का भी संख्या, कन्याओं की भी है और पुत्रों की भी है, लेकिन जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो अब बहुत देर से, मुझे 35 साल के बाद कृष्ण भावना भावित होके चेतना महाप्रभु के अचिंत्य भेद अभेद तत्व को, जब वो चेतना चरित में तो ढूंढ रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, तब चेतना चरित में तो उपलब्ध नहीं थी, एक कापी नहीं मिली उनको, मुश्किल से एक कापी मिली। इसका मतलब चेतना महाप्रभु के दिव्य इस चेतना चरित अमृत, जो प्रभुपाद जी एक बड़े प्रोग्राम से बाहर आ रहे थे तो किसी ने कहा प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बंगाली मिठाई है, खाइए। प्रभुपाद ने क्या है बंगाली मिठाई, बोला रसगुल्ला है, संदेश है। प्रभुपाद ने बंगाली मिठाई तो एक ही है, बोले प्रभुपाद यही तो है और कौन सी है, बोला बंगाली स्वीट है चेतना चरित अमृत, बंगाली भाषा में जो बहुत मधुर है वो तो चेतना चरित अमृत है। ऐसी चेतना चरित अमृत जो भक्ति विनोद ठाकुर को पढ़ने के लिए मिली नहीं, बहुत प्रयास के बाद, और सामान्य व्यक्ति नहीं था, मैजिस्ट्रेट था, किसी को कहे तो बहुत से लोग सेवा करने वाले थे, नहीं मिल रही थी। और आश्चर्य यह है कि चेतना चरित अमृत बंगाली में तो है, पहले श्रील प्रभुपाद ने बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, और फिर भक्ति चारु स्वामी महाराज को कहा कि इसका वापस बंगाली में ट्रांसलेट करो। ये आश्चर्य नहीं है, बंगाली से अंग्रेजी में करके फिर भक्ति चारु महाराज कहा इसको हम बंगाली में अब करो। इसका मतलब जो उन्होंने भावार्थ दिए हैं वो सिद्धांत बंगाली में नहीं है, तो उन्होंने विशेष रूप से उसको वापस बंगाली में ट्रांसलेशन करने का आदेश दिया, और फिर बंगाली में ट्रांसलेशन हुई, बंगाली से अंग्रेजी, अंग्रेजी से वापस बंगाली। सो भक्ति विनोद ठाकुर के जो जो दिनचर्या थी वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी। उनसे वैसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम उनके जैसा नकल कर पाए, लेकिन कुछ समय की, जैसे उन्होंने चिट्ठी को, चिट्ठियों को जवाब देने का एक आधा घंटा रोज रखा था कि जो भी चिट्ठियां आए हैं लिखनी है या देखनी है उसका एक समय निर्धारित था। तो ऐसे हम भी कुछ समय निर्धारित करें कि हमारे को चिट्ठियां तो नहीं आती हैं, आज मोबाइल में मैसेज आते हैं, तो उनका एक समय निर्धारित करेंगे, भाई आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को इसको हाथ लगाएंगे, बाकी जब फोन करना होगा तो उठाएंगे, नहीं तो इससे हमारा काम नहीं। कम से कम कुछ नेम, ये कथा उनकी सुनने से केवल कुछ नहीं है, वो जीवन में कुछ उतारना चाहिए। उन्होंने एक नेम बना रखा था कि ये समय मेरा जो है भाई, ये समय मेरा जप का है, ये समय मेरा नाश्ता करने का है, ये समय मेरा चिट्ठियों का जवाब देने का है, और अब सरकार या काम पे जाना है तो काम पे जाना है और वहां का काम पूरा करना है, और फिर शाम को वापस आके कुछ किताब पढ़ने है, कुछ लिखना है। तो इस प्रकार से वो 3.5-4 घंटा मेरे ख्याल में उनके जीवन का आराम का समय, दिन में आधा घंटा और रात को 2-3 घंटे थे, बाकी सब पुस्तक लिखना और सरकार का 6 घंटे जो ड्यूटी, 8 घंटे वो सरकार की ड्यूटी थी। लेकिन अपना नेम एक उसमें हमको सीखना ये है कि खान पान का नेम होना चाहिए, जब आए जहां आए जैसे आए, ऐसा ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की ना, तो पशुओं की सृष्टि की, पशुओं ने कहा है ब्रह्मा बाबा बहुत भूख लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा जो मिले जहां मिले जाओ खाओ, जंगल में बहुत पड़ा है फल फूल, जो चाहे वो खाओ। तो बेचारी बकरी सारा दिन खाने लगी, जहां मिले जैसे खिले। फिर इंसान ने कहा ब्रह्मा जी भूख तो हमको भी लगी है। बोला नेम से खाओ, टाइम टाइम से खाओ, 2 टाइम में काम चल जाए तो 3 मत खाओ, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता करो दोपहर का और सायंकाल का। नाश्ता अगर करना है तो राजकुमार जैसा करो, और दोपहर का भोजन राजा जैसा खाओ, और रात का भोजन फकीर जैसा खाओ, भिखारी जैसा नहीं मिले ऐसा खाओ। ऐसे नियम बना दिया। मानव बहुत समय तक नियम से खा रहा था, फिर कोई बड़ा बुद्धिमान पैदा हुआ, उसने बोला ये क्या है, जानवर जब चाहे जहां चाहे खड़े खड़े खाए, क्या हम जानवर से कम है क्या, सिर्फ 2-3 टाइम खाएंगे? नहीं, हम जब चाहें जहां चाहें और खड़े खड़े खाएंगे। अभी सब लोग कंपटीशन में सारा दिन घर से निकलते हैं, एक ठेले पे गोलगप्पा, दूसरे पे मूंगफली, तीसरे पे कुल्फी, सारा दिन पशु बने खड़े खड़े खा रहे। और खड़े खड़े खाने का वेद में निषेध है, सिर्फ चरणामृत खड़े ले सकते हो, बस प्रसाद मिले तो जरा जिभा पे रख सकते हो, बाकी पानी भी बैठ के पीना है। लेकिन कोई न हाथ धोता है न पांव मुंह धोता है, खाने के बाद एक टिश्यू पेपर लेके ऐसे साफ करके और चल देते हैं आगे। ये संस्कृति का सत्यानाश हुआ। वो भक्ति विनोद ठाकुर के नेम से खाना, कितना वो लिखा है, इतना रोटी, 1 कप दूध, जो भी लिखना है, क्या खाते थे वो भी लिखा है। तो उनकी जो दिनचर्या थी एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को अंग्रेजी भाषा में लिखकर अंग्रेजी सरकार के जमाने में उसको 5 देशों में भेजा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पुस्तक, वो श्रील प्रभुपाद जब गए अमेरिका में तो उनको वो पुस्तक लाइब्रेरी में वहां मिला। तो इसलिए कहते हैं कि वैसे भी 3 पीढ़ियों के परिश्रम से गंगा धरती के ऊपर आई, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ। ऐसे कृष्ण भावना अमृत संघ के विस्तार के लिए 3 पीढ़ियों का परिश्रम है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। 3 पीढ़ियों का बहुत बड़ा परिश्रम है, इसका बीज भक्ति विनोद ठाकुर ने डाला। और जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना की कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा इतना काम, आप अपनी कोई शक्ति आवेश करके ऐसा मेरे को व्यक्ति दीजिए जो मैं काम जहां छोड़ रहा हूं वहां से आगे बढ़ाए। जब उनका तबादला कृष्ण नगर में हुआ तो उनके घर से कृष्ण नगर आने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेल की छोटी लाइन बनाई। इतने महत्वपूर्ण थे कि उनको, क्योंकि उन्होंने सरकार में वो काम सरकार के लिए किए जो कोई करने वाला नहीं था। एक तो सबको मालूम है वो जो एक बड़ा योगी बड़े बालों वाला विश्वकेश नयन था, वो अपने आप को भगवान घोषित कर रहा था और ब्रिटिश सरकार उससे परेशान थी। और भक्ति विनोद ठाकुर ने तो उससे बाल कटवा के उस योगी को जेल में डाला, और उसने भक्ति विनोद ठाकुर की बेटी को बहुत बड़ा कष्ट दिया अपने तांत्र से। बीमार हो गई, बुखार आ गया, लेकिन उसकी चिंता नहीं की और निडर होके वो भूत को जाकर, इस घर में भूत है, प्रभुपाद जी अपना लिखते हैं कि कानपुर में जब मैं रह रहा था तो घर किराए पे ढूंढ रहा था, एक घर बहुत सस्ता मिल रहा था। मैंने बोला ये सस्ता क्यों दे रहे? बोला इसमें भूत है इसलिए कोई रहता नहीं है। प्रभुपाद ने बोला यही ले जाता हूं, मेरा क्या भूत बिगाड़ेगा। तो सस्ता ही मिल रहा है तो उसमें बैठ के हरे कृष्ण जपने लगे, भूत का उद्धार हो गया, भूत भाग गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे कहीं भूत था। और भी एक मेरे को बहुत पुरानी याद आती है, किसी गांव में जा रहे थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे, तो आप यहाँ कैसे आए रात को, यहाँ तो बड़ा भूत होता है। बोले नहीं, हम तो वहाँ कीर्तन किया, वो जाके देखें तो वो पेड़ में भूत नहीं है, वो भूत बेचारा मुक्त हो गया। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर का एक तो भय नहीं था, निर्भय उनका जीवन था। जो भगवान का भक्त होता है वो निर्भय होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर के पुस्तक अभी हमारे लिए तो बहुत बड़े शास्त्र का जो है स्थान रखते हैं। उनके भजन मेरे ख्याल में आधे हमारे वैष्णव भजन भक्ति विनोद ठाकुर के भजन। और जो रिटायरमेंट के बाद एक दिन अखबार में उन्होंने दिया कि हमको मंदिर निर्माण के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान की सेवा के लिए कल सेवा निवृत्त मजिस्ट्रेट केदारनाथ आपके घर में आएगा, कोई उसको निराश न करे। ये अखबार में दिया। और भक्ति विनोद ठाकुर घर घर में लोगों से पैसा इकट्ठा करने गए कोई विशेष कार्य को शुरू करने के लिए, मंदिर बनाना था कि कोई काम था, कि अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं है लेकिन भगवान के लिए मांगने में हमें लज्जा नहीं आती है। और जब रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने बाबा जी वेश लिया। बाबा जी वेश परमहंसों का वेश है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि मैं बाबा जी वेश इसलिए नहीं लेता हूं कि हम परमहंस के स्तर पे नहीं है, हम वर्ण आश्रम की व्यवस्था में रहना चाहिए चाहते हैं। तो वर्ण आश्रम में सन्यास उच्च वर्ण है, तो मैं सन्यास ग्रहण करता हूं, बाबा जी वेश नहीं लेता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी वेश लिया। और बाबा जी वेश उन्होंने अपना वैष्णव सौम जगन्नाथ बाबा जी महाराज को वो अपने शिक्षा गुरु मानते थे। वैसे उनका दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। और एक तो भक्ति विनोद ठाकुर की विशेषता है कि उन्होंने चेतना महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ का खोज करके प्रकट किया, क्योंकि गंगा जी वहां रास्ते बदलती रहती है, इसलिए उन्होंने सारे रेवेन्यू के मैप निकाले और कहां उस वक्त में नवद्वीप होगा गंगा जी के तट पे, वो खोज करके जब उस स्थान को निकाला, वो अपने घर में जालंगी के दूसरे वहां उनको प्रकाश दिखाई देता था योग पीठ का। तो फिर उन्होंने निकाला और तब जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत वृद्ध हो गए थे, तब तो उसका शिष्य वृंदावन से उनको टोकरी में उठा के ले गया था, तो उठा के जब वहां उस स्थान पे लाए तो वो उठ के कूदे के यही वो जगह है चेतना महाप्रभु का जन्म स्थान। तो एक तो भक्ति विनोद ठाकुर का विश्व को चेतना महाप्रभु का योग पीठ प्रकट करके दिया। वैसे हम कृष्ण भावना अमृत संघ वाले हमको तो और पता नहीं है, लेकिन जो पुराने बाबा जी लोग है ना, वो एक और स्थान नवद्वीप में उस दूसरे तरफ है जहां उनके सारे जो है श्रीवास आंगन भी उस तरफ है, योग पीठ भी उस तरफ है, उनका एक दूसरा है, वो दूसरा भी एक है, लेकिन ये प्रकट जब नहीं किया तब तक वो दूसरा चलता था, अब ये प्रकट हो गया इस तरफ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी फिर इस तरफ सारा नया बनाया, लेकिन आज भी उस तरफ ये नई चीजें हैं, पुरानी चीजें चल रही है। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी थी कि ऐसा कोई भगवान भविष्य में भेजेगा जो चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रचारित करेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी पीढ़ी में श्रील प्रभुपाद ने ये उनकी भविष्यवाणी को सत्य करके दिखाया। और ये भी एक और भविष्यवाणी भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की थी कि एक दिन चेतना महाप्रभु के जन्म स्थान पे पूरे विश्व से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, रशिया से, चाइना से लोग आएंगे और हाथ ऊपर करके हरि बोल गाएंगे। ये चेतना ये भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी था कि ऐसे होगा। और श्रील प्रभुपाद के 100 साल जन्म शताब्दी जब मना रहे थे तब 108 देशों के लोग अपने देश का झंडा लेकर और श्री चेतना महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ से हरि बोल करके ये भविष्यवाणी सत्य हुई। तो ये भविष्यवाणियां तीन चार जो भक्ति विनोद ठाकुर की है वो सब सत्य हुई है। और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत समय आके, कुछ समय जगन्नाथपुरी में उनका घर था, जो उनका घर था हरिदास ठाकुर की समाधि के सामने था, जो अब इस्कान ने ले लिया है, वह मंदिर बना हुआ है, जो घर था उनका जहाँ। और फिर वृंदावन में राधा कुंड में आके भक्ति विनोद ठाकुर कुछ समय रहे, राधा कुंड में भगवत भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर है, आज भी जाते हैं। तो क्योंकि ब्रिटिश के समय ना था और भक्ति विनोद ठाकुर का शरीर भारी था वृद्धावस्था में, तो अभी आप हम उस स्थान में जाते हैं तो जो कमोड वाला टॉयलेट है वो उन्होंने उस जमाने में लगाया था उनके लिए, ब्रिटिश सरकार में उस वक्त ये चीज राधा कुंड में उनके वहां लगी हुई है, और उनके हाथ में छड़ी लेते थे और शाल ये वहां रखी हुई है। राधा कुंड में गए हैं आप लोग कभी उन स्थान पे? कभी राधा कुंड में भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर जहाँ घर है उधर ये सब सामान भक्ति विनोद के, और स्वयं जहां रहे जालंगी के सुखद क्या सेवा सुखद कुंज सुरभि कुंज तो अलग है, इनका सुरभि कुंज है सेवा सुखंद ऐसे कुछ नाम है, जालंगी नदी के दूसरे तरफ उनका जो घर है उस घर में निरंतर सत्संग करते थे, और गौर किशोरदास बाबा जी उस सत्संग को सुनने जाते थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गौर किशोरदास बाबा जी के भक्ति के निपुण भावों को देखा, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सत्संग पे जाते थे, और गौर किशोरदास की समाधि भी उधर ही उनके आंगन में है, गौर किशोरदास बाबा जी की भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आंगन में, अगर मेरे को बहुत समय हो गया लेकिन याद ऐसे आता है। और उनके घर में अभी भी मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा था, क्योंकि उस जमाने में पंखे अभी आए नहीं थे, तो मिट्टी के तेल से पंखा चलता था, वो उनके घर में एक पंखा रखा हुआ है, और ऊपर वाले मंजिल से वो दूसरी तरफ देखते थे। तो उनके घर अभी तक भी सुरक्षित पड़ा है, और जाके मायापुर में जाते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए दूसरी तरफ देखने जाते हैं। सो भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद आय और क्या है, गौर शक्ति स्वरूपाय। तो उनको सो गदाधर पंडित राधा रानी का स्वरूप, और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी इन दोनों के चरणों में प्रणाम करके उनसे कृपा चेतना महाप्रभु और नित्यानंद के चरणों में हरिनाम संकीर्तन की सेवा हो सके, और कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति युग में हो, और श्री प्रभुपाद के कृष्ण भावना अमृत संघ के अंतर्गत हम अपनी भक्ति को परिपुष्ट कर सकें, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में। हरे कृष्ण। और कोई शेयर करना चाहे गदाधर पंडित या भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के विषय में? क्योंकि मैं पहले मेरे को ध्यान था लेकिन रात मैंने इसको देखा नहीं, दोनों को सब लिखा पड़ा है लेकिन देखा नहीं मैंने इसकी बहुत विस्तार से, लेकिन ये सामान्य। हाँ जी आज गुंडीचा मार्जन का भी दिन है, लिखा नहीं है गुंडीचा मार्जन। गुंडीचा वैसे महाराज की रानी का नाम है, गुंडीचा महाराज प्रताप रुद्र की रानी का नाम है, और गुंडीचा के नाम से बना हुआ मंदिर है जिसको वृंदावन माना जाता है। वृंदावन है माधुर्य धाम जहां भगवान की प्रेम लीला है, द्वारका है ऐश्वर्य धाम जहां भगवान का ऐश्वर्य है, और मायापुर नवद्वीप है औदार्य धाम, चेतना महाप्रभु का है औदार्य धाम। ये तीनों धाम जगतनाथपुरी में एक जगह पे निवास करते हैं। जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वो है द्वारका, ऐश्वर्य धाम है, भगवान को 56 भोग लगते हैं, हर 5 मिनट के बाद भगवान के लिए 56 भोग जाते हैं, मैंने पूरा दिन 500 रसोई हैं और मिट्टी के बर्तनों में और लकड़ी के ऊपर भोजन निरंतर बनता ही रहता है। दुनिया का एक मंदिर है जिसमें 1,00,000 लोगों के लिए प्रसाद पका हुआ हर समय मिलता है, तो वो ऐश्वर्य धाम है। और जो गुंडीचा है वो वृंदावन है, माधुर्य धाम है। गुंडीचा मंदिर है वो माधुर्य धाम है, वृंदावन है। और जो महाप्रभु जहां रहते थे गंभीरा, वो औदार्य धाम है। तो तीनों धाम पुरी में एक जगह पे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भाई मौसी के घर जा रहे हैं, ऐसे वो उनकी भाषा में बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि बहन के साथ जा रहा हूं, भाई के साथ जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं। तो क्योंकि अब 20 स्नान यात्रा से लेके कितने दिन, 15 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 15 दिन जो है वो ठीक तबीयत नहीं रही, तो थोड़ा हवा बदलने जा रहे हैं। हवा बदलने के लिए बाहर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो बोल मुझे तो सामने मौसी के घर जा रहा हूं। तो वृंदावन के लिए निकलते हैं, तो जाके गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, 7 दिन वहां रहते हैं, 7 दिन गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा भगवान इस मंदिर, क्योंकि उधर वैसे नॉर्मली पूजा नहीं होती है, वो तो बंद पड़ा होता है, तो अब उसकी उसका मार्जन करना चाहिए। तो सारे भक्तों को लेकर 2-2 मिट्टी के कुल्हड़ और 1 झाड़ू लिया और जाके पहले तो सारी मिट्टी साफ की झाड़ू से, और कहा कि जितनी मिट्टी निकलेगी उतना हृदय का मैल साफ होगा, फिर किसकी मिट्टी ज्यादा है देखो, जिसने ज्यादा निकाली उसने ज्यादा सेवा की। फिर पानी लेकर सारा धोया और पानी से पूरे मंदिर को धोया। आज भी गौड़िया वैष्णवा और झाड़ू और 2 मटके लेके जाके धुलाई और ये सेवा आज भी करते हैं। आज के दिन पे सारे गुंडीचा मंदिर को धो के और बहुत सुंदर बना के रखेंगे, क्योंकि कल भगवान रथ के ऊपर आके पहुंच गए तो उतर के दूसरे दिन, कल तो रथ यात्रा पंडे लोग पहुंचाते नहीं है ना, वैसे भगवान के मन हो या ना हो लेकिन पंडू का मन होता है, 1 दिन बाहर खड़े रहे तो कम से कम लोगों को दर्शन होगा, क्योंकि अंदर सबको नहीं जाने देते हैं, बाहर तो सबको दर्शन करते हैं। तो जो भी है कल से दर्शन हो जाए, परसों से फिर 7 दिन वहां रहेंगे। तो गुंडीचा उस मंदिर का नाम है जो वृंदावन के समान है, और महाप्रभु ने उसके मार्जन करने का एक नियम बनाया था। तो आज तक भी सारे गौड़िया वैष्णव भक्त पूरा गुंडीचा मार्जन करने के बाद क्या करेंगे, गुंडीचा मार्जन के पीछे सरोवर है उसमें सब जाके स्नान करेंगे। उसके बाद आप स्नान करने जाएंगे, लोकल लोग जो है ना साधु को देखेंगे तो तेल लेके आपके सर के ऊपर लगाएंगे, आगे पांव पकड़ के लगाते रहेंगे कि भाई मुझे सौभाग्य मिलेगा। महाप्रभु जब ऐसे गए होंगे सबके साथ तो लोगों ने उनको स्नान से पहले तेल लगाना, उनको स्नान कराना, पानी डालना। तो क्या नाम है उसका, इंद्रद्युम्न सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर मेरे ख्याल में नाम उसका क्या है, जो पीछे है जगन्नाथपुरी के, उसमें सब स्नान करते हैं। तो जब 1-2 बार जब गए तो ये सेवा का दर्शन किया, भाग लिया, लेकिन बहुत समय हो गया, फिर भी जाना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ जी, शिला प्रभुपाद गुरु जी को प्रणाम का नियम है सीधा सर उनके चरणों में लगना चाहिए। भगवान को प्रणाम लेफ्ट साइड से, देवी देवता को राइट साइड से। अगर कोई भगवान को प्रणाम सीधा करता है, राइट साइड से करता है, पीछे से करता है, तो पुण्य क्षीण होते, पुण्य क्षीण होते। ये मंत्र है, ये नीति शास्त्र का मंत्र है। भगवान को सामने से सीधा, लेफ्ट से या पीछे से प्रणाम करने से पुण्य क्षीण होते हैं, वाम भाग से ही प्रणाम करना चाहिए। देवी देवता को सीधे हाथ की तरफ से प्रणाम, और गुरुजनों को प्रणाम सर गुरुजनों के चरणों में लाना चाहिए, सीधा दंडवत करना चाहिए, गुरु को सीधी दंडवत होती है। लेकिन हमारे मंदिरों में ऐसी प्रणाली कुछ है कि प्रभुपाद जी का आसन प्राय बिल्कुल मंदिर के सामने होता है, अगर ऐसे प्रणाम करते हैं तो मंदिर की तरफ और ठाकुर जी की तरफ पांव जाते हैं। तो फिर किसी ने कहा नहीं है, जैसे जैसे है वैसे प्रणाम अभी लेफ्ट साइड से ही हो रहा है, लेकिन होना चाहिए सीधा बिल्कुल प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम सीधा होना चाहिए, शास्त्र का ये नियम विधान ये। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।